ये आकाशवाणी दिल्ली है। अगले 20 दिन में दिल्ली के सभी हिस्सों में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। दिल्ली में लास्ट माइल यात्रा आसान और पर्यावरण अनुकूल होगी। सरकार शहर में कल 400 इलेक्ट्रिक दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर बसें उतारेंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में आकर बसे लाखों श्रमिकों की देखभाल और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए हीट स्ट्रोक यूनिट को शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शहर में स्वच्छता के संबंध में राजनिवास में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, शहर के सभी जिलाधिकारी, उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त और प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले 20 दिनों में दिल्ली के सभी हिस्सों में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।
अगले 20 दिन में हर स्तर पे दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए कि हर जगह स्वच्छता अभियान को बहुत ही मास स्केल पे चलाया जाए। हर एरिया में, अपने जोन में हर डीसी की जिम्मेवारी होगी, हर डीएम की जिम्मेवारी होगी और किसी भी प्रकार का फुटपाथ पे, सड़क पे एंक्रोचमेंट यदि दिखता है, सेफ्टी में कहीं लैप्स होता है तो डीसीपी की जिम्मेदारी होगी।
दिल्ली विधानसभा के पुस्तकालय को अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आज दिल्ली विधानसभा सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद श्री गुप्ता ने इस पहल के महत्व पर कहा कि ई लाइब्रेरी की स्थापना न केवल अमूल्य अभिलेखीय सामग्रियों के संरक्षण में सहायक होगी बल्कि इससे विधायी अनुसंधान को भी बल मिलेगा। दिल्ली में लास्ट माइल यात्रा को आसान, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार शहर में कल 400 इलेक्ट्रिक दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टेड डीईवीआई बसें उतारने जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक स्वच्छ और स्मार्ट भविष्य की ओर बढ़ रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये केवल परिवहन नहीं है बल्कि साफ हवा स्मार्ट सफर का एक आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि वे इस हरित दिल्ली की यात्रा में शामिल हों और शहर में स्वच्छ, हरित और स्मार्ट यात्रा का आनंद लें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एन सरवण कुमार ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। लगभग ढाई दशक के अपने करियर में श्री कुमार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में काम किया है। डीडीए ने कहा कि श्री कुमार का समृद्ध अनुभव डीडीए के लिए ऐसे समय में लाभकारी होगा जब यमुना रिवर फ्लड प्लेन्स का पुनरुद्धार, इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना और नरेला सब सिटी का विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। दिल्ली के आईएनए इलाके में स्थित दिल्ली हाट में कल देर शाम भीषण आग लगने से लगभग 26 दुकानें जल गई। आज संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी है।
आज हम लिस्ट बना रहे हैं ऐसे सभी लोगों की जिनका नुकसान हुआ है और हम लोग संकल्पित हैं दो चीजों के लिए। एक तो जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ सरकार खड़ी है, दोबारा उनकी दुकानें लगे इसकी व्यवस्था करेंगे, और दूसरा आग के कारणों की जांच करके जो भी कोई दोषी होगा उसको सजा भी दिलाई जाए, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं।
दिल्ली सरकार में जल मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार पर पानी को लेकर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव हारने के बाद वे दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहते हैं। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर के हर घर में पेयजल देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन पंजाब सरकार दिल्लीवासियों का पानी रोककर उनसे बदला लेना चाहती है। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अपनी असफलता को छिपाने के लिए बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से हरियाणा और दिल्ली में पानी की व्यवस्था संभालने में विफल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को नहीं छोड़ेगी। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में बोडो नेता बोडोवा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। गृहमंत्री ने इस अवसर पर उनके नाम पर एक सड़क समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने देश से आतंकवाद को समूल उखाड़ने के लिए सरकार का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हमले के दोषियों को उचित जवाब मिलेगा। गृहमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के साथ पूरी दुनिया इस लड़ाई में भारत के साथ है। श्री शाह ने कहा कि सरकार 1990 के दशक से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ता से कायम है। श्री शाह ने कहा कि बोडोफा की प्रतिमा न केवल बोडो समुदाय बल्कि इस तरह की सभी छोटी जनजातियों का सम्मान बढ़ाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज भी इस अवसर पर मजबूर। आज सर्वोच्च न्यायालय ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जांच के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से सशस्त्र बलों का मनोबल गिर सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसी याचिका दायर करनी चाहिए थी और याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने को कहा। यह याचिका जम्मू और कश्मीर के 3 निवासियों द्वारा दायर की गई थी, जो बाद में वापस ले ली गई। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को 26/11 मुंबई हमला मामले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और हस्ताक्षर नमूने रिकॉर्ड करने की अनुमति दी है। यह आदेश विशेष NIA जज चंद्रजीत सिंह ने NIA द्वारा दायर आवेदन पर दिया। न्यायालय ने सोमवार को राणा की हिरासत को 12 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के बाद आज ये निर्णय लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर शहर के करोल बाग में एक निर्माण स्थल पर आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल पर श्रमिकों से मुलाकात भी की। श्रीमती गुप्ता ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार श्रमिकों के हित में कार्य कर रही है।
जितने भी श्रमिक भाई अपने अपने गांव से चल के दिल्ली में आके रहते हैं, यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, वो सरकार की जिम्मेवारी है। उनके परिवार की देखरेख, उनको सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देना सरकार की जिम्मेवारी है। तो आज मैं अपने सभी दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपके हित के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए सरकार सदैव तैयार खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम में श्रमिकों को राहत देने के लिए सरकार 3,000 वाटर कूलर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर कार्यस्थल पर शुद्ध पीने का पानी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत परंपराएं और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करना था। इस कार्यक्रम में साहित्य कला परिषद से जुड़े लगभग 40 कलाकारों ने लोक नृत्य, संगीत, नाटक और पारंपरिक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन राज्यों से आए हुए लोग दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार मैदान पर समर्पण और असाधारण प्रदर्शन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल और कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोधी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत पिछले वर्ष 30,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां पीड़ितों और उसके सही हकदारों को लौटाई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रवर्तन निदेशालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भीषण गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अपनी हीट स्ट्रोक यूनिट को शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए आज से अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत की गई है। इमर्शन कूलिंग तकनीक से युक्त इस यूनिट में 200 और 250 लीटर की क्षमता वाले दो इमर्शन कूलिंग टब बनाए गए हैं। इसके अलावा एक उच्च क्षमता वाला बर्फ बनाने वाला रेफ्रिजरेटर भी इस यूनिट में है। मरीजों की गहन देखभाल के लिए वेंटिलेटर और उन्नत मल्टी पैरामीटर मॉनिटर से सुसज्जित दो क्रिटिकल केयर बेड भी हीट स्ट्रोक यूनिट में बनाए गए हैं। मीडिया बातचीत करते हुए अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि ये यूनिट इमर्शन कूलिंग तकनीक से सुसज्जित है, जो हीट स्ट्रोक के त्वरित प्रबंधन के लिए वर्तमान में स्वर्ण मानक है।
जो इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी है, यही लेटेस्ट टेक्निक है वर्ल्ड वाइड, जो सबसे इफेक्टिव मानी जाती है।
अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमलेंदु यादव ने बताया कि पिछले वर्ष भी हीट स्ट्रोक यूनिट चालू की गई थी और इस वर्ष भी यह यूनिट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।
हमारी 3 एम्बुलेंस इक्विप्ड है फॉर डीलिंग विद द हीट स्ट्रोक और हमने एक आउटरीच सर्विस भी रखी है जिसमें हम फील्ड एरिया से ही उसका हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसको टाको मेथड ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो वो एक हमारी आउटरीच सर्विस है दिस ईयर।
अस्पताल से पहले की देखभाल की दिशा में एक कदम के रूप में अस्पताल ने एक मोबाइल हीट स्ट्रोक रिस्पॉन्स यूनिट भी शुरू की है। यह मोबाइल यूनिट सीधे फील्ड स्थानों पर जीवन रक्षक हस्तक्षेप करने के लिए डिजाइन की गई है, जो रोगियों के लिए समय पर उपचार सुनिश्चित करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर।
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नए उपाय शुरू किए हैं। आयोग अब मृत्यु पंजीकरण संबंधी आंकड़े भारत के महापंजीयक से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर सूचना मिल सकेगी। इससे बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ को भी क्षेत्रीय दौरों के जरिए सूचना की पुनः जांच करने में सुविधा होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष नए सीजन में 256 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री चोपड़ा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य इस वर्ष के अंत तक अपने लक्ष्य 312 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद को पूरा करना है। राजधानी में आज दिन में चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अगले 20 दिन में दिल्ली के सभी हिस्सों में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। दिल्ली में लास्ट माइल यात्रा आसान और पर्यावरण अनुकूल होगी। सरकार शहर में कल 400 इलेक्ट्रिक दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर बसें उतारेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में आकर बसे लाखों श्रमिकों की देखभाल और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए हीट स्ट्रोक यूनिट को शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।